તારીખ 15/5/1996 શ્રી સમયસાર ગાથા 254-256 તથા શ્લોક 168 અને 169 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 246.
જીવ કહાં બંધ કરતા હૈ, જીવ કો સ્વયં બંધ હોતા હૈ તો કિસ પ્રકાર સે હોતા હૈ? વસ્તુ સ્વરૂપ સે વિપરીત પરિણામ કરતા હૈ. જૈસે કે કોઈ કિસી કો સુખ દુઃખ દે સકતે નહીં, અપના પ્રારબ્ધ કર્મ અનુસાર સબો કો સુખ દુઃખ કી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ. ફિર ભી વિપરીત માન્યતા કો લેકર કે, અજ્ઞાન કો લેકર કે, મુજે કોઈ સુખી કરતા હૈ, મુજે કોઈ દુખી કરતા હૈ, મેં ભી દૂસરે કો સુખી દુખી કરતા હું, એસા જો અભિપ્રાય હૈ, એસા વિકલ્પ નહીં લ્યા, એસા જો અભિપ્રાય હૈ, જિસે યહાં અધ્યવસાય કહેતે હૈ, યહી જીવ કો બંધ કા કારણ હૈ. ઉસમેં પરિણામ ચિકને હોતે હૈં ઔર કષાય અનંતાનુબંધિકા હોતા હૈ. અનંતાનુબંધિકા કૈસે? કે અગર મુજે કોઈ સુખ દુઃખ દેતા હૈ તો દૂસરે કો ભી કોઈ સુખ દુઃખ દેતા હૈ, ઇસકો ભી કોઈ સુખ દુઃખ દેતા હૈ, ઇસકો સબ અનંત અનંત જીવો કે પ્રતિ વો માન્યતા હો ગઈ. મુજે સુખ દેને વાલા ભી બહુત ઔર દુઃખ દેને વાલા ભી બહુત. એસા હૈ કે પૂર્વગ્રહ જો હૈ વો કૈસે વિપર્યાસ હૈ, શલ્ય હૈ મને એક બડા વિપર્યાસ હૈ. કિસી ભી જીવ કી અવસ્થા તો પલટતી હૈ, કોઈ એક અવસ્થા રૂપ તો જીવ હોતા નહીં હમેશા. પૂર્વગ્રહ વાલે કો ક્યા રહેતા હૈ કે વો હમેશા એક હી દ્રષ્ટિ સે ઉનકો દેખતા હૈ. જૈસે કોઈ જીવ કો પ્રતિકૂળ સમજ લ્યા, યે તો એસા હી હૈ, દુર્ગુણી સમજ લ્યા, વો તો વૈસા હી હૈ, હમેશ કે લીએ વો ઉનકો વૈસા હી માનેગા. ઔર ઉદય મેં ઉસી પ્રકાર કા હી પૂર્વગ્રહ વસાતી વ્યવહાર કરેગા. જબકે વો જીવ કભી ભી પલટ સકતા હૈ ઔર કભી ભી ઇસકી યોગ્યતા મેં, તો યોગ્યતા તો સમય સમય કી હોતી હૈ હર જીવ કી, ઉસમેં ફેરફાર ભી હો સકતા હૈ. ઇસ સત્ય કો નહીં સ્વીકાર કરકે ઔર ઇસકે આત્મા કા સ્વીકાર ભી નહીં કરકે, જૈસી અપની કલ્પના હૈ વૈસી કલ્પના કો ગ્રહણ કરના, ગ્રહિત પકડ કરકે રખના, વો પૂર્વગ્રહ હૈ. પૂર્વ મેં કી હુઈ કલ્પના કી પકડ ઉસકો કહેતે હૈ પૂર્વગ્રહ. વો ચાલુ રહેતી હૈ તો ઉસમેં દુઃખ દેને વાલા સુખ દેને વાલા વો બાત ઉસમેં સમાવિષ્ટ હો જાતી હૈ. ઇસ જીવ કો બંધ કા કારણ હૈ. ઇસલીએ સભી કો આત્મા કે રૂપ મેં દેખના, પર બાત હુઈ થી कि माथा को काटने वाला भी कोई भी हो है भगवान आत्मा, वो दृष्टि को मुख्य करने से पूर्वग्रह नहीं रहता। वो अलग बात है,
वो पूर्वग्रह में,
हाँ अभिप्राय सहित होता है, वो पूर्वग्रह होता है। बिना अभिप्राय यानी अभिप्राय विरुद्ध विकल्प आ जाए वो अलग बात हो गई, वो बात अलग है। अभिप्राय पूर्वक होता है वो शल्य में जाता है, और जहां तक कोई भी शल्य रहता है जीव का स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ नहीं उठता, वो हमेशा उसका पुरुषार्थ पर सन्मुख चलता रहेगा, दिशा बदलेगी नहीं। दो ही तो दिशा है, एक पर सन्मुख एक स्वसन्मुख भावार्थ। जीव का जैसा आशय होता है उसी आशय के अनुसार जगत के कार्य, जगत में कार्य बनते नहीं होते, नहीं बनते, तो यह आशय अज्ञान है। आशय कहो या अभिप्राय कहो, जीव का जैसा आशय मैंने अभिप्राय होता है, वस्तु का स्वरूप अगर ऐसा नहीं है पर उस प्रकार वस्तु का परिणाम नहीं होता तो वो अभिप्राय वो आशय अज्ञान है। इसलिए सर्व जीव अपने अपने कर्म का उद्देश्य सुखी दुखी होते हैं। सर्व जीव को अनुकूलता प्रतिकूलता जो भी कुछ होता है संयोग में, इष्ट संयोग अनिष्ट, इष्ट संयोग में राग होता है, अनिष्ट संयोग में द्वेष होता है, इष्ट वियोग में द्वेष होता है, अनिष्ट संयोग में राग होता है, जबकि कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है ही नहीं, लेकिन अभिप्राय में इष्ट अनिष्ट पना रख करके जो सुख दुख अनुभव करता है वहां ऐसा मानना कि मैं पर को सुखी दुखी करता हूं और पर मुझे सुखी दुखी करता है, यह अज्ञान है, यह अज्ञान है। निमित्त नैमित्तिक भाव के आश्रय से कोई किसी के सुख दुख के करने वाला कहना वो व्यवहार है। निमित्त नैमित्तिक संबंध देख करके ऐसा बोलना कि इसने उसी को सुखी किया, उसका उपकार किया, लो ना इसने इसके पर उपकार किया, वो व्यवहार है। व्यवहार है मैंने मात्र कथन है, कोई किसी को सुख दुख पहुंचाता है कर सकता है वो वस्तु के स्वरूप में तो है ही नहीं, और ऐसा व्यवहार निश्चय की दृष्टि में गौण है। जब निश्चय की दृष्टि मुख्य होती है तो इस प्रकार का व्यवहार गौण रहता है। अब यही अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। पिंडे दुष्ट अनेक पिंडे दुष्ट विवेक दुष्ट अनेक बांध मार बहु विधि करे, धरिय सीमा विवेक कोपन कीजे कोपन कीजे प्रीत मार। वही है उत्तम क्षमा घोरे भाई, ये भव जस भव पर भव दुखदा सुखदायी, गाली सुनी मन खेदन आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो। अज्ञानी गुण को अवगुण कहता है, कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहु विधि करे, धरते निकारे तन विदारे, वैर जोन कहाँ धरे, से कर्म पूर्व किए खोटे, सह क्यों नहीं जीरा, ये जीव तूने ही खोटे कर्म किए थे वो तुमको सहन करना होगा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सीरा, क्रोधाग्नि को बुझाए बुझाने के लिए साम्य ठंडा शीतल साम्य रूपी जल को ग्रहण कर ले, सही बात
है।
खुद का कर्म बंधा हुआ है तो पूजा में भी जो ज्ञानियों ने पूजा की रचना की है उसमें तत्व ज्ञान के संकल्पना क्या है। श्री गुरु में उपकार बुद्धि आती है तो उस वक्त निश्चय दृष्टि गौण रहती है, भक्ति प्राधान्य परिणमन में निश्चय दृष्टि गौण रहती है और निश्चय दृष्टि मुख्यता में व्यवहार गौण रहता है। ये मुख्य गौण की पद्धति है, कभी व्यवहार के परिणाम मुख्य होते हैं कभी निश्चय के परिणाम मुख्य होते हैं। भेद उतना है के व्यवहार के परिणाम में भी स्वलक्षी परिणमन होना चाहिए तो वो व्यवहार के स्थान में यथार्थ व्यवहार रहता है। अगर स्वलक्षी परिणाम नहीं रहा तो व्यवहार दूसरों के साथ होता है तो उसमें यथार्थता नहीं रहती है। यथार्थता में क्या होता है कि व्यवहार होते ही होते हुए भी उसमें परमार्थ का हेतु निहित रहता है, पारमार्थिक हेतु पूर्वक का जो व्यवहार है वो यथार्थ व्यवहार है, सही व्यवहार है, वो उसी को ही व्यवहार बोला जाता है। तो व्यवहार भास है, हाँ तो निश्चय का सवाल नहीं है। जिसका व्यवहार भी यथार्थ नहीं है उसका निश्चय यथार्थ हो ही सकता नहीं। एक सौ 168 कलश, सर्वम सदैव नियतम भवती स्वकीय कर्मोदयात मरण जीवित दुख सौख्यम अज्ञान मेतदीहयत्व परस्य कुर्यात् पुमान मरण जीवित दुख सौख्यम। इस जगत में जीवों को मरण और जीवन, दुख और सुख सभी सदैव नियम से अपने कर्म के उदय से होता है, ये मुख्य मुख्य बात है। जीवन मरण की मुख्यता बहुत है जगत में और सुख दुख की मुख्यता भी बहुत है, तो ये जो मुख्य मुख्य प्रसंग बनता है जीवन मरण का या सुख दुख का कोई भी प्रसंग बनता है वो नियम से जीवों को अपने स्वयं के कर्म के उदय अनुसार बनता है, अपने कर्म बांधे हैं उसी अनुसार होगा। दूसरा पुरुष दूसरे का मरण जीवन सुख दुख करता है ऐसा जो मानना, यह तो अज्ञान है। तो मान्यता अज्ञान पूर्वक की है, इसलिए मानने को अज्ञान बोलते हैं। मानना तो श्रद्धा गुण है, लेकिन वो अज्ञान पूर्वक मानना होता है, इसलिए ऐसा मानना वही अज्ञान है। क्योंकि वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है, और ऐसी मान्यता और ऐसे अज्ञान से जीव को अनंत राग द्वेष होएगा, और वो राग द्वेष से वो दुखी होगा, नया कर्म बंधन करेगा। ये सब आपत्ति अज्ञान और मिथ्या मान्यता के कारण से होती है। ऐसा जान करके इस प्रकार के अभिप्राय का त्याग करना चाहिए। ये बात समझ करके इस प्रकार के अभिप्राय का त्याग करना चाहिए। मुमुक्षु की भूमिका में अभिप्राय बदलने की भूमिका है। जो मान्यता वस्तु के स्वरूप अनुसार होती है, ऐसा अभिप्राय को बना लो। कैसे अभिप्राय को बनाए कि जब जब ऐसा प्रसंग होवे तब यही सिद्धांत को, यही समझ को लागू करो, और अपने जो उल्टे परिणाम हैं उसको रोकने के का पुरुषार्थ करने से अभिप्राय बदल जाएगा। फिर से यही अर्थ को दृढ़ करने वाला और आगे का कथन की सूचना के लिए काव्य कहते हैं, मैंने और एक श्लोक कहते हैं। अज्ञानम एतद अधिगम्य परात परस्य पश्यन्ति ये मरण जीवित दोख सौख्यम चिकीर्षवस्ते मिथ्यादृशो नियम आत्महनो भवन्ति। मिथ्या दृष्टि नियतम निश्चय रूप से आत्महनो, आत्मा का हिंसा करने वाला, खून करने वाला होता है। श्लोकार एतत् अज्ञानम अधिगम्य, उस प्रकार से जो मान्यता कही, इस प्रकार से अज्ञान को प्राप्त करके जो पुरुष पर से पर का मरण जीवन सुख दुख सुख को देखता है, अर्थात मानता है, स्वीकार करता है, वे पुरुष कि जिन्होंने उस प्रकार से अहंकार रस से, जो उस प्रकार से अहंकार रस से कर्म करने का इच्छुक है, अर्थात मैं इस कर्म को करता हूँ, ऐसा अहंकार रूपी रस से जो कर्म करने की यानि मारने की, जिलाने की, सुखी दुखी करने की वांछा करने वाला है, वे नियम से मिथ्या दृष्टि है और अपना आत्मा का घात करने वाला है, आत्मघाती है। आत्मघात सबसे बड़ा पाप किया है कि नहीं किया, बोला है आत्मा का घात करने वाला है, सबसे बड़ा अपराध लिया है। वो क्या कहते हैं कि जो ऐसी मान्यता में पड़े हैं अज्ञान में, मैं दूसरे को मारता हूं या जिलाता हूं, रक्षण करता हूं, सुखी करता हूं या दुखी करता हूं, उसको अहंकार रस चढ़ जाता है। अहंकार होता है ऐसा नहीं बोला, अहंकार का रस चढ़ जाता है। मान्यता साथ में आई ना, अभिप्राय, अभिप्राय समेत जो परिणाम होते हैं वो हमेशा हमेशा चिकने होते हैं, रस वाले होते हैं, और अभिप्राय विरुद्ध होता है वो रुखे होते हैं, इसलिए टूट जाते हैं, क्योंकि अभिप्राय उसका निषेध करता है, इसलिए वो लंबा तार नहीं है। इसलिए यह कहा कि जो मान्यता पूर्वक दूसरे का जीवन मरण सुख दुख का अभिप्राय रखता है उसको अहंकार का रस चढ़ता है। किस प्रकार का? जो भी मारने का, जिलाने का, सुख देने का, दुख देने का जो भी कार्य है वो कार्य का अहंकार का रस उसको चढ़ेगा। अहंकार होना एक बात है और अहंकार का रस चढ़ करके बात होना, परिणाम होना बिल्कुल दूसरी बात है। रस पूर्वक होता है वो बंध का कारण होता है, वो तो शुरू से वो बात लिया है कि परिणाम में जो चिकनाई है वही बंध का कारण है, बंध तत्व उसको कहा है, बंध अधिकार है ना। नव तत्व में एक बंध तत्व है। बंध तत्व किसको जाना, जानना कि अपने परिणाम में जो चिकनापन है, रस है, किसी भी कषाय रस, किसी भी प्रकार के दोष का कषाय का जो रस है वही जीव को बंध का कारण है। कभी तीव्र रस में आना नहीं, चाहे जैसा प्रसंग हो क्या हो जाएगा, आगे होकर के होने वाला क्या है, इससे आत्मा को क्या होने वाला है, इसलिए सभी उदय प्रसंग को एकदम लाइटली लेना, मंद रस आएगा, तीव्र रस नहीं आएगा। चाहे जितना भी भूल, तो लोग ऐसा करता है कि मामूली प्रसंग को बहुत बड़ा वजन दे करके चिकने परिणाम कर लेते हैं। यहाँ तो ज्ञानी कहते हैं कि कोई कितना भी कैसा भी प्रसंग हो, भारी से भारी हो, उसको हल्का सा महसूस करना, तो मेरे आत्मा को क्या हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है, न कुछ आता है मेरे आत्मा में, न कुछ जाता है मेरे आत्मा में, मैं तो वैसा का वैसा, यूं का यूं रहता हूं, फिर मेरे में ये खलबली क्यों होनी भी चाहिए। यही ज्ञानी के मार्ग में प्रवेश करने का द्वार है, वो कृपालु देव ने लिखा है। किसी भी उदय में मंद रस से प्रवेश करना, वो तो जागृति हुए तब तो होता है, वरना तो एकदम उलझ जाएगा। जागृति होगी अंदर में तो उदय आएगा, चेतावनी ज्ञान में आ जाएगी कि मुझे परिणाम में गड़बड़ होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए मेरे परिणाम चिकने होने चाहिए। ऐसे किसी भी उदय में मंद रस से प्रवेश करना वही ज्ञानी के मार्ग में प्रवेश करने का द्वार है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी तीव्र रस से उदय में परिणमन करते नहीं है, वो तो रुखे परिणाम होते हैं उनके, तो क्योंकि वो तो भिन्न हो गए, भिन्नता होने से लेना देना है ही नहीं, मेरा संबंधी नहीं, ये मचक आई उनको मैं देखता हूं लेकिन वास्तव में मेरा संबंध है ही नहीं।
हाँ?
कोई भी भाव हो, कोई भी उदय हो, मेरा आत्मा एक असंग चैतन्य तत्व है, सदा ही निर्लेप रहता है, इसलिए मुझे संबंध नहीं तो फिर मुझे लेना देना क्या रहा। संबंध मान करके जीव चीकना परिणाम कर लेता है, स्वयं बंधता है और दुर्गति में जाता है, बंधन करके दुर्गति में चले जाएगा। जिस संयोग के कारण से या जिस दूसरे जीव के कारण से अपने परिणाम जो चिकने करते हैं, उसमें दूसरे जीव कोई उसको छुड़ाने के लिए आएगा फिर मैं क्यों करूं? जब दूसरे जीव मुझे छुड़ाने को आते नहीं फिर मैं चिकने परिणाम क्यों करूं? मुमुक्ष को अभिप्राय बदल देना चाहिए। वही तो कहा आचार्य महाराज ने, वो बात किया है तो गुरुदेव तो वही कहेंगे कि जो अहंकार रस से कर्म की वांछा रखता है, कर्म करने की वांछा रखता है, वे नियम से मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि उतना ही नहीं कर बोल के रखा, वो आत्मा के घात करने वाले हैं, आत्मा के खून करने वाले हैं। आत्मा में शांति आनंद ज्ञान ऐसे जो प्राण है, आत्मा के गुण है ना, वो आत्मा के प्राण है, वो प्राण को वो आनंद को उत्पन्न नहीं होने देगा, आत्मा की शांति का खून करेगा, मतलब आत्मा का खून करेगा वो। भावार्थ जो पर को मारने का या जिंदा रखने का तथा सुख दुख करने का अभिप्राय करता है, देखो अभिप्राय शब्द लिया है, अपना अभिप्राय का प्रकरण तो बहुत चला, वे मिथ्या दृष्टि है, वे नियम से कोई भी हो जगत में जो परोपकार की सेवा की अनेक संस्थाएं हैं, इनके जो मुख्य नेता होते हैं उनकी बहुत बड़ी इज्जत होती है, अपने यहाँ है ना वो मदर टेरेसा है, इंटरनेशनल उनकी आबरू होती है, क्या कहीं भी जाए उनका मान सम्मान लोग करते हैं। यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं कि ऐसी मान्यता और अभिप्राय है कि मैं किसी को सुखी करता हूं, नियम से मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है और वो मोही है, रागी द्वेषी मोही है, स्वरूप से च्युत हो गया है, अपने स्वरूप से च्युत हो गया है और अपने से ही अपने का घात करने वाला है। अरे दूसरे को तो बचाता है कि दूसरे को बचाने बचाता है, लेकिन अपना को तो घात करता है। देखो लौकिक विषय में और अलौकिक विषय में कितना बड़ा अंतर है, इसलिए जो आत्मकल्याण के मार्ग में अग्रेसर होते हैं वो लौकिक कार्य में उलझते हैं नहीं। ठीक है कोई विकल्प आ गया बात अलग है, लेकिन अभिप्राय पूर्वक करेगा तो अहंकार अहंकार रस चढ़े बिना रहेगा। लौकिक में दूसरे को मदद पहुंचाना, जरूरतमंद को मदद करना, सेवा करना गुण माना गया है। वो तो निस्वार्थ है, अपने जेब से पैसा निकाल करके दे देता है, उसको अवगुण कैसे कहे। और कोई ऐसे भी होते हैं कि खुद प्रतिकूलता को सहन करे और अगले को अनुकूलता दे दे। जैसे ठंड के दिन है और कोई ठंड से दुखी होता है, इसके पास अपना रक्षण करने के लिए कपड़े नहीं है, अपना कपड़ा दे दिया। देने वाले ने क्या किया, भले ही हमको ठंड लगे हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन उनको दुखी, वो बेचारा दुखी है, उनको दे दो। उसमें उसने क्या अपराध किया? लौकिक रूप से तो कोई अपराध मानेगा
नहीं,
लेकिन साथ साथ मैंने उसको सुखी किया, ये अहंकार रस चढ़ा, वो अपराध नहीं है क्या? काम किया, बुरा काम किया, बताइए क्या ऐसा अच्छा काम नहीं करना चाहिए क्या? इनको हम पूछ सकते हैं कि ऐसे परिणाम और कार्य करने में आपको मैंने किया ऐसा कोई अहम भाव आता है क्या? उस अहंकार को रोकने के लिए आपके पास कौन सा साधन है कि बिना वस्तु स्वरूप का ज्ञान अहंकार आए बिना रहेगा नहीं, रोक सकते नहीं अहंकार को। और एक सेवा के कार्य करने के साथ साथ दूसरा अहंकार का दुर्गुण घुस जाएगा। बकरा तो निकला लेकिन ऊंट बैठ गया, ये बात हो जाएगा। तो उनको चाहिए कि आप अच्छे काम करने के लिए अभिलाषा रखते हो, अभिप्राय रखते हो कि हमेशा जगत में अच्छा काम करना, तो साथ साथ कोई अवगुण नहीं पैदा हो उतना भी साथ साथ ज्ञान कर लो ना, तो सोने में सुगंध आ जाएगी। कि वो कुछ भी करेगा, अपना सब कुछ न्योछावर करेगा, फिर भी यही भाव रहेगा कि मेरा कुछ था ही ना नहीं, मेरा तो कुछ था ही नहीं, तो मैंने मेरा दिया वो बात कहाँ रहती है? और मैं किसी को सुखी कर सकता नहीं, मैंने सुखी किया वो भी बात मेरे लिए है ही नहीं। परोपकार करेगा फिर परोपकार का अहम भाव करेगा नहीं, वो ज्ञान दशा में बनता है। ज्ञान दशा आने से वो बात नहीं, वही सर्वोत्कृष्ट व्यवहार है। अच्छा व्यवहार करके व्यवहार का अहम भाव करें वो अच्छा व्यवहार नहीं है। ये तो दान की बात किया, ऐसे ही व्रत नियम संयम ले लो। जहां तक जीव की पर्याय बुद्धि रहती है, मिथ्या बुद्धि रहती है, वहां तक वो पर्याय का अहम भाव करेगा। व्यवहार तो अच्छा है, व्रत नियम संयम पालन करना व्यवहार तो अच्छा है, लेकिन मैंने ये किया ये अहम भाव वो व्यवहार का दूषण है, वो व्यवहार अच्छा नहीं है। उसका अहम भाव नहीं आए उच्च से उच्च कोटि का व्यवहार होने पर भी उसका अहम भाव नहीं आवे, वही सही यथार्थ व्यवहार है, वरना यथार्थ व्यवहार नहीं है। मैं देश का कार्य कर सकता हूँ, देश के लोगों को मैं सुखी कर सकता हूँ, ऐसा मानने वाला मुंड है। गुरुदेव तो ऐसे बोलते थे कड़क टोन में। गांधी जी समझ गए कि मुझे बराबर फटकारते हैं, लेकिन बुरा नहीं माना। वो गुणग्राही थे, गांधी जी थे वो गुणग्राही थे, इसलिए कृपालु देव ने चिट्ठी लिखा है गुणग्राही श्री मोहनलाल करमचंद गांधी, गुणग्राही शब्द लिया है। गुण ग्रहण करने की वृत्ति उनकी अच्छी थी। तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसा मानने वाला मूंड है, तो उन्होंने देख लिया कि मैं ऐसा मानता हूं तो मुझे ही मूंड कहा है, लेकिन मुझे बुरा मानना नहीं चाहिए। वो तो उपदेश देते हैं, सही उपदेश देते हैं, ठीक है। हैं उनको सुनने का भाव हुआ ना, दोबारा जब राजकोट में आए तो याद किया गुरुदेव को, तो मुझे मुंड कहते थे, वो महाराज किधर है। अगर होता तो दोबारा सुनने को जाते, वो उनको भाव तो वही था, अभिप्राय तो वही था कि भले ही हमको मुंड कहते हैं लेकिन ऐसा कहने वाला कौन है हमको। अगर हमको कोई हमारा दोष दिखाते हैं तो हमें बुरा मानना नहीं चाहिए, हमें उसको उपकारी मानना चाहिए, और अपना दोष निकालने के लिए वो मदद करता है ऐसा मानना चाहिए, तो उसको उपकारी मानना चाहिए। दुनिया की नजर में तो ऐसी बात है, लौकिक दृष्टि में तो उनके लौकिक गुण बहुत थे, इसलिए उनको महात्मा भी कहते हैं, ठीक है। दुनिया में तो ऐसा ही चलता है। ये भूल रहे हैं, मूल दशा में अहिंसा पालन करते हैं, अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं ना, तो मैं दूसरे को रक्षण करता हूँ, जीवन दान देता हूँ, ये अभिप्राय से मिथ्या तो चालू रहता है। वो तो अपने स्वरूप से च्युत होता है, क्या कहते हैं यहाँ, कि वे अपने स्वरूप से च्युत होते हुए, क्यों अपने स्वरूप से च्युत होते हैं, कि अपना स्वरूप सन्मुख हो ही नहीं सकते, पर के कार्य करने के अभिप्राय के कारण से जीव के परिणाम पर की ओर लगे रहते हैं, लगे रहेंगे, और वो वापस मुड़ करके अंतर्मुख होने वाले नहीं हैं। इसलिए वो स्वरूप से च्युत होते हुए रागी द्वेषी मोही होकर के स्वयं ही अपना घात करता है। राग द्वेष मोह के परिणाम मिथ्यात्व और अज्ञान सहित होते हैं, जीव के ज्ञानानंद का प्राणों का घात होता है, इसलिए वो स्वयं का हिंसक है, दूसरे की अहिंसा पालन करता है फिर भी स्वयं का तो हिंसक है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि जो स्वयं की अहिंसा नहीं हिंसा करता है, जो स्वयं की हिंसा करता है वो पर की अहिंसा का पालन कैसे करेगा। जैसे कि कोई खुद ही दीन अनाथ है वो दूसरे का नाश कैसे होएगा, जो खुद ही भीख मंगा है वो दूसरे को दान कैसे देगा, दे सकता? वैसे ही जो खुद की हिंसा करता है वो दूसरे की हिंसा वास्तव में पालन करता है, वो बात स्वीकार करने लायक नहीं है। तो यही बंध अधिकार के बाद में 259 गाथा लेना है। एक बिल्कुल नहीं, अपना स्वरूप के सिवा वो दूसरे को अपन तो अपनापन करते नहीं है, अपना मानते ही नहीं। दो सौ 259 का था। अब यह अज्ञानमय अध्यवसायी बंध का कारण है, ऐसा गाथा में कहते हैं। ऐसा दू जा मदीदे दुखी द सुही दे करे मी सत्य थे, ऐसा दे मूढ़ मदी स्वा स्वम बंध दे कमम। तेरी जो यह बुद्धि है कि मैं जीवों को सुखी दुखी करता हूँ, यह तेरी बुद्धि, ये तेरी मूढ़ बुद्धि। कैसी बुद्धि है वो? मूढ़ बुद्धि ही शुभ अशुभ कर्म को बांधता है। ये मूढ़ बुद्धि बांधती है शुभ अशुभ कर्म को। बंध का अधिकार है ना, तो बंध कैसे होता है? बुद्धि माने अभिप्राय। कि ऐसे तेरा झूठा अभिप्राय है, तो तुम किसी को सुख दुख दे सकता नहीं, कर सकता नहीं है, फिर भी तेरा झूठा अभिप्राय है कि मैं दूसरे जीवों को सुखी दुखी करता हूँ। ये तेरी मुंड बुद्धि ही, ये विपरीत बुद्धि है। मुंड बुद्धि है माने विपरीत बुद्धि है, उसको मुंड क्यों कहते हैं? मुंड में कुंठित हो जाना, बिड़ाई जव, मुंडाई जव, इतले बिड़ाई जव के अपने हित के विषय में खुद स्वयं का अहित करे, वो बुद्धि मुंड नहीं है क्या? है अपने हाथ से अपने गले पर शस्त्र का प्रहार करे, उसे क्या कहना? स्वयं अपने आप को नुकसान करे, दुखी करे, उसको क्या कहना? आचार्य महाराज तो करुणा से ये बात करते हैं, उनको कोई लेना देना तो नहीं, नहीं। ये एक विशिष्ट सन्मार्ग का प्रदर्शन है कि ऐसे उपदेश देने वाले बिल्कुल नग्न दिगंबर होते हैं। वो स्वयं कहते हैं कि देखिए मुझे तो कोई किसी से अपेक्षा है ही नहीं, सब छोड़ करके निकल गए और किसी की कोई व्यवस्था का स्वीकार नहीं करते, न रहने की, न खाने की, न पीने की, न आने की, न जाने की, कोई व्यवस्था का स्वीकार नहीं करता है। इसलिए वो निरपेक्ष है, ये साबित करने की जरूरत नहीं है। ऐसे गुरुओं को, मुनियों को, वो गुरु के स्थान में है। जैसे कृपालु देव ने उपदेश देने में वो बात रखी अपने अभिप्राय में कि मैं सर्वसंग परित्याग करूंगा, 708 नंबर का पत्र है, मैं जब सर्वसंग परित्याग करूंगा तब उपदेश उपदेशक के स्थान में उपदेश दूंगा, इसके पहले मुझे किसी को उपदेश देना नहीं है। हाँ, कोई जिज्ञासु मेरे पास आता है, मार्ग का शोधक होता है, खोजी होता है और पिपासु होता है, तो उनको मैं मार्ग बतला देता हूँ कि देखो हमने तो मार्ग इस तरह से पाया है, तुम भी इस तरह से अंतर्मुख हो सकते हो और सन्मार्ग को ग्रहण कर सकते हो। लेकिन उपदेशक बन करके उपदेश दिए नहीं, क्यों कि लोग इस सुंदर मार्ग पर शंका करते हैं कि उपदेश तो वितरागता का देता है और खुद तो रागी है, उसको तो वो चाहिए और वो चाहिए, उनको तो वो चाहिए और वो चाहिए, बहुत से चीज उनको तो सारे दिन चाहिए चाहिए होती है, और बात ऐसा करता है तो ये बात झूठी करता है, क्या करे कहेगा ये बात कहने वाला झूठी बात करता है, मानेगा नहीं लोग। ये सुंदर मार्ग पर कोई शंका नहीं उठाए इसलिए वो उपदेश नहीं देते थे, सत्संग करते थे कराते थे अलग बात है, वो तो अपने लिए करते थे। ज्ञानी सत्संग करते हैं कराते हैं उसमें अपने लिए ही करते हैं, सर्वसंग परित्याग होता है तब उपदेशक का शुरुआत होती है। सर्वोत्कृष्ट उपदेशक तो सर्वज्ञ वितराग जिनेन्द्र परमात्मा है, 13वें गुण स्थान पर शुरुआत 6ठे गुण स्थान से होती है, वो बात उन्होंने 837 नंबर के पत्र में किया है। तो वो कह सकते हैं कि तुम दूसरे को सुखी करने का अभिप्राय रखता हो, ये तेरी मुंडता है, वो ही कह सकते हैं, बादशाह है ना वो, तो उनको कोई चंदा बंदा करने की कोई आशा होती नहीं है, उन्हीं कभी चंदा बंदा नहीं करते, बिल्कुल नहीं, कोई कोई लौकिक कार्य में पड़ते नहीं। अरे धार्मिक कार्य की कोई जिम्मेवारी मुनि नहीं लेते, लौकिक कार्य तो नहीं करते लेकिन कोई धार्मिक अनुष्ठानों की जिम्मेवारी भी मुनिराज लेते नहीं, वो तो अपना केवल ज्ञान लेने के लिए निकल गए। घर से जब निकल गए हैं, अपने परिवार से निकल गए हैं, तो वो केवल ज्ञान लेने के लिए निकल गए हैं। वो केवल ज्ञान लेने के पुरुषार्थ में अहर्निश लगे रहते हैं, रात दिन उसके पुरुषार्थ में पड़े हैं, उनको कोई फुर्सत नहीं है, कोई दूसरा काम करने की जिम्मेवारी लेने की कोई फुर्सत नहीं है, नहीं कोई कोई नहीं करते, पूजन प्रक्षाल दया दान कुछ नहीं करते, सिर्फ अपना आत्मसाधन में लगे हैं, इसलिए इसलिए उनको साधु कहने में आता है, इसलिए वो कहते हैं कि तेरी बुद्धि मूंड है, और यही बुद्धि से तुम शुभाशुभ कर्म को बांधता है, अपने आत्मा को बंधन करता है। अशुभ बंधन तो कोई अच्छा नहीं मानता, लेकिन शुभ बंधन भी बंधन ही है। किसी को ऐसा पूछा जाए कि तुमको बेड़ी पहनानी है, सोने की पहनेंगे क्या? बेड़ी पहनानी है और तुम अच्छे लोग हैं तो तुमको सोने के पहनाएंगे क्या? ठीक है क्या?
नहीं,
कि ये सोने की बेड़ी उनको शोभा देती
नहीं
है। शोभा देती है क्या?
नहीं,
शोभा नहीं देती। वो खुद ही लांछन है, बेड़ी पहनना खुद ही लांछन है, चाहे बेड़ी लोहे की हो या सोने की हो। वैसे जो जीव परमात्म तत्व स्वरूप है, तीन लोक का नाथ होने लायक है, उसको शुभ कर्म का बंधन भी लांछन है, वो उनको शोभा देता नहीं है। टीका, और जीवों को मैं हनता हूँ, मैंने हिंसा करता हूँ, मारता हूँ या नहीं मारता हूँ, यानी रक्षा करता हूँ। पर जीवों को मैं दुखी करता हूँ या सुखी करता हूँ, ऐसा जो ज्ञानमय अध्यवसाय है वो मिथ्या दृष्टि को है। मिथ्या दृष्टि को ऐसा अभिप्राय हमेशा होता है। वही अर्थात ये अध्यवसाय ही स्वयं रागादि रूप होने से उस मिथ्या दृष्टि को शुभाशुभ बंध का कारण है। क्या कहते हैं कि पाप के परिणाम का स्वीकार तो जगत में होते ही नहीं, कि वो ठीक है, लेकिन पुण्य के जो परिणाम हैं, दूसरे की अहिंसा रक्षा करना, दूसरे को ठीक करना, वो भी पारमार्थिक प्रकरण में मिथ्यात्व और अज्ञान का दोष है। वो बात परमार्थ को समझने वाले को ही समझ में आती है, बाकी वो बात समझ में नहीं आएगी। धर्म के क्षेत्र में भी ये गड़बड़ चलती है, ये करो वो करो, जितने भी शुभ कार्य हैं वो शुभ बंधन के कारण है, अभिप्राय में करने लायक नहीं होना चाहिए। भूमिका अनुसार परिणाम अवश्य होगा, हो सकता है, लेकिन वैसा परिणाम करने का अभिप्राय वो अज्ञान और मिथ्यात्व है। और अज्ञान और मिथ्यात्व पूर्वक जो शुभाशुभ का बंध होता है वही परिभ्रमण का कारण है, क्योंकि अनंतानुबंधी का कषाय है। बाकी शुभाशुभ तो ज्ञानी को भी होता है, पंचम गुण स्थान तक अशुभ होता है कभी कभी, छठे गुण स्थान से अकेला शुभ भाव होता है, अशुभ भाव
नहीं
होता है। वो गुण स्थान अनुसार मर्यादा है, और अनिवार्य रूप से शुभाशुभ होगा, क्योंकि पूर्ण वितराग नहीं हुआ है तो बाकी का भाव में तो शुभ और अशुभ होगा ही होगा। लेकिन अभिप्राय तो मुमुक्षु की भूमिका में पलट देना नहीं चाहिए, अभिप्राय पलटेगा तो ज्ञान दशा आएगी, ज्ञान दशा आएगी फिर शुभाशुभ आएगा तो भी बंधेगा उसको, फिर बंधन नहीं है ऐसा बोला जाता है। ये इसकी व्यवस्था है, अबंध होने की, मुक्त होने की ये व्यवस्था है। ये बंध अधिकार है, वो बंध का अभाव करने के हेतु से निरूपण किया गया है। तो देखिए, तुमको बंध इस प्रकार से होता है, तुमको बंध नहीं हो गए ऐसा कर लो। वो 170 कलश का भावार्थ में जयचंद जी क्या लिखते हैं, झूठा अभिप्राय वही मिथ्यात्व और वही बंध का कारण है ऐसा जानना। अपना अभिप्राय का प्रकरण तो बहुत चला है कि जो मिथ्या अभिप्राय है, अनेक प्रकार का जो मिथ्या अभिप्राय है, तो मुमुक्षुता के क्रम में कैसे कैसे पलटता है और वैसे वैसे हमको पलटाना चाहिए, वो बराबर समझ करके मुमुक्षुता से शुरू करके आगे बढ़ करके ज्ञान दशा तक पहुंचना चाहिए। यही फिर मोक्ष मार्ग में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए यहाँ अभिप्राय प्रवचन दिया है कि झूठा अभिप्राय वही मिथ्यात्व है, वही जीव को बंध का कारण है और वही परिभ्रमण का कारण है। और इसके भावार्थ में भी यही लिखा है कि मिथ्या अध्यवसाय बंध का कारण है, वो दोहराया है जयचंद जी ने। अध्यवसाय कहो या अभिप्राय कहो, यही बंध का कारण है। इस तरह से 259 गाथा यहाँ
भावे निश्चय शिवरज
सर्व दुखों